वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे भक्त्याभिहीनाय अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते च
तुमको बहुत बहुत आशीष सब लोगों
मैंने चार पांच दिनों तक सनातन धर्म के संबंध में थोड़ा कुछ बतलाया। विशेष करके मैंने सनातन धर्म का प्राण भक्ति है इसको बतलाया। गीता से भी मैंने कल कुछ इसकी पुष्टि की, इसलिए जितने भी शास्त्र हैं उनका प्राण ही भक्ति है। भक्ति ही भगवान का स्वरूप शक्ति है। तो मुझसे जो हो सका एक घंटे के अंदर में प्रतिदिन कुछ कुछ बतलाया। पिछली भी बात ये आया था तो सनातन धर्म के संबंध में कुछ लोगों की भ्रांतियां थी, उसको मैंने दूर करने की चेष्टा की। तो मैं आज जो मुझे बोलने के लिए सुयोग मिला, इसके लिए फिजी सनातन धर्म सभा के जो प्रेसिडेंट हैं, सभापति, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, वो हैं जिन्होंने ये सब की व्यवस्था की। विशेष करके यहाँ हमको लाने वाले पुंजा ब्रदर्स, पुंजा भाइयों ने हमें यहाँ पर लाया, पहली बार भी लाया, यहाँ पर लोगों से परिचय किया, उन लोगों को भी धन्यवाद है। यहाँ की जो व्यवस्था कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। इन श्रोताओं को जो इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं बड़ी बड़ी दूर से, उन सब के लिए भी मेरा धन्यवाद है कि इनको भगवत भक्ति हो। भविष्य में भी हम आने की चेष्टा करेंगे कि जो लोग इधर में भक्ति के तरफ में झुक रहे हैं वो कमजोर ना हो, भक्ति वृत्ति को छोड़ न दे। विशेष करके जो लोग हरिनाम दीक्षा लिए हैं उनका दायित्व तो है कि सनातन धर्म में लोगों की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए बीच बीच में प्रवचन करने की व्यवस्था करें। भारतवर्ष से साधु संत लोग आए जो ठीक ठीक इस तत्व को जानते हैं, विशेष करके भक्ति योग में उनको बुलाया जाए और वो लोग भाषण देकर के लोगों को समझाएं कि जीवा की लालसा से मांस मछली अंडा खाना ये सनातन धर्म के विरोधी है, न खाएं, और जो ड्रिंक करते हैं वो न करें, माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, पत्नी को जथा सम्मान दे, जथा योग्य पत्नियों को सम्मान देने तो वो घर चौपट हो जाता है, और स्त्रियां भी पति को और परिवार को यथा रूप से उनको सम्मान दें, घर को बनाए, बिगाड़े नहीं, सूर्पनखा इत्यादि न बने, सूर्पनखा और पुतना जैसी नारी न बने, सीता के समान, राधिका जी के समान। अभी देखो भारतवर्ष में बहुत सी रमणियां हो गई हैं, लक्ष्मी बाई का नाम सुना होगा और सब हैं, देश के लिए भी उन्होंने काम किया, समाज के लिए भी काम किया, ऐसे होना है। घर में रसोई बनाने के लिए ही और बच्चा पैदा करने के लिए ही लड़कियां नहीं हैं, उनको मातृत्व तो भी निभाना है। अच्छे युग लड़के लोग सब तैयार हो, भगवत भक्ति संपन्न हो, वीर और बहादुर भीम और अर्जुन की तरफ में वो सब बच्चे पैदा हो। पिता से दायित्व तो माता का है, ये सबकी शिक्षा हो और सब में भक्ति हो, बचपन से ही उनमें कूट कूट करके भगवान के प्रति, अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति ये भाव भरना है, नास्तिक न बन जाए। इसलिए महिलाओं का भी बहुत ही दायित्व तो है, वो लोग भी निभाएं, पुरुष लोग भी निभाएं, महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाए, घर की नौकरानी और बच्चा पैदावार ली ऐसा न समझा जाए। रामचंद्र जी ने और हमारे पांडवों ने और दूसरे लोगों ने स्त्रियों को यथा योग्य सम्मान नहीं दिया है। उस समय भारत बहुत ऊंचाई पर था, सारे विश्व में भारत का प्रभुत्व था। ऑस्ट्रेलिया जानते हैं क्या था, ये अस्त्रागार था पांडवों का ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया और सब जो हैं ये भारत से मिले हुए थे। पार्थ के नाम से वो पर्थ हुआ, इस तरह से काश्पियन सागर कश्यप ऋषि रहते थे सारे जगहों में। पांडव लोग चारों तरफ में दिग्विजय किया था, तो वैसा ही भारतवर्ष हो भी, और हम लोग जहां भी रहे सनातन धर्म की ध्वजा उड़ती रहे, कभी कमजोर मत हो। ये फिजी में भी ऐसा ही हो, फिजी ये भारत ही है, मिनी भारत, मिनी भारत के रूप में ये रहे। हमारी बेटियां बहुएं माताएं भी और पुरुष लोग, बेटे पिता और ये सब लोग भी, भाई लोग भी, खूब अच्छी तरह से सनातन धर्म की मर्यादा समझ कर करें तो सुखी रहेंगे, देश सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, अन्यथा नहीं रह सकता। कर्म के संबंध में कल मैं थोड़ा सा बतला रहा था, जरा स्पष्ट नहीं, उसको स्पष्ट थोड़ा सा और कर दे। एक आदमी बाजार गया और वहां से फल खरीद करके लाया, बड़े बड़े मीठे आम ले आए, केले अमरूद इत्यादि लाए और भी सब चीजें लाए। एक आदमी लाया इसलिए कि हम लोग खाएंगे परिवार के लोग और मैं खाऊंगा और शरीर ठीक रहेगा, शुद्ध शुद्ध बनेगा। और एक आदमी लाया अनासक्त होकर के, शरीर की पुष्टि से नहीं होता है, आत्मा की पुष्टि होनी चाहिए, इसलिए अनासक्त होकर के लाया जीवन के निर्वाह के लिए। और एक आदमी लाया जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के लिए रसोई बनेगी और तब हम प्रसाद लेंगे। पहला हुआ जो अपने लिए लाया, वो हो गया कर्म, और जो अनासक्त होकर के जो लाया जीवन निर्वाह के लिए, वो हो गया ज्ञान। और भगवान के लिए जो लाया सेवा वृत्ति से, वो हो गया भक्ति। दूसरे उदाहरण से फिर से समझो, एक आदमी को 100 रुपए दिए, दान किया, वो गरीब आदमी उसको दान कर दिया, एक आदमी ने अपने पिता को 100 रुपये दिए। पहले व्यक्ति को जो दिया ये कर्म है दान दिया, और वही चीज अपने पिता को 100 रुपये ये 1000 रुपये दिए, ये पिताजी को दान होगा कि क्या होगा, ये सब विचार करो। बेटा अपने या बहू अपने बाप के लिए जो देगी वो उनके पिता को दान देगा क्या? जैसे पूंजा जी के लड़के हैं, उनके पिताजी बैठे हैं, तो पूंजा जी के लड़के अपने पिताजी को दान देंगे ना क्या करेंगे? यदि 100 रुपया 1000 रुपया दिया तो ये दान हुआ कि नहीं हुआ, ये विचार करो क्या हुआ? ये दान नहीं हुआ। पिताजी को कौन दान देगा? पिताजी की संपत्ति तो तू भोग रहा है, तू ही पिताजी का संपत्ति है, तुम पिताजी को क्या देगा? उनकी गद्दी पर बैठ करके उनकी कमाई का भोग कर रहा है, वो पिताजी को दान करने का अधिकारी नहीं है, करता है तो वो नरक जाएगा, इसलिए पिताजी की सेवा हो गई और दूसरे दुखो दान का ये कर्म हो गया। तो ये कर्म से उनको जगत में आना जाना पड़ेगा भाई, जगत में आना जाना पड़ेगा, कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म मत करो, उद्देश्य ठीक हो। मैं जो कुछ कर रहा हूं कर रही हूं ये भगवान की प्रीति के लिए कर रहा हूं। सारा विश्व प्रभु से निकला है, प्रभु की संतान है, हमारे बेटे हमारे पति हमारे पत्नी ये सभी प्रभु के हैं, हमारा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है भाई, तो दूसरों को क्या दान देगा? दान देने से उसका फल लेने के लिए इस जगत में आना पड़ेगा, ये कर्म है। कर्म मत करो, क्या करो? उद्देश्य बदल दो। एक आदमी ने कहा कि आप क्या खाते हैं? मैंने कहा जीवन में मैंने खाया नहीं। कहे ये हो नहीं सकता है, तो मैंने खाया नहीं, मैं कहता हूं ना, तो कैसे? तो हम तो प्रसाद की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाया, प्रभु है मालिक, भोग लगा करके उनका प्रसाद की सेवा की, ऐसी भावना रखनी चाहिए, तब फिर कर्म में नहीं लिपटा हो गया, नहीं तो कर्म में लिपटा करके फिर जन्म में आना और जाना पड़ेगा। इसीलिए भागवत गीता के अंत में बतलाया ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समंत सर्वेश भूतेषु मद्भक्तिम भवति। गीता का ये तात्पर्य है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत व्यक्ति हैं, ब्रह्म तत्व को समझने वाले हैं, वो क्या करते हैं? कोई चीज नष्ट होने से शोक नहीं करेंगे, क्या शोक करने लायक है? यदि भक्ति हानि हो गई आत्मधर्म न तब तो गड़बड़ हो गया, इसलिए वो नहीं नष्ट होना चाहिए। बाकी संसार का कोई चीज चला गया तो उसके लिए वो शोक नहीं करते और किसी चीज की आकांक्षा नहीं करते, आकांक्षा करते हैं केवल भगवत भक्ति की, जो हमारा परम धर्म है। ऐसे व्यक्ति लोग क्या होंगे? लभते भक्ति परां, अंत में पराभक्ति, महान भक्ति, जो पराभक्ति प्रेम भक्ति है भगवान की, उसको प्राप्त करते हैं। ये गीता का उद्देश्य है, इसलिए इससे भटको मत, कर्म मार्ग में मत आओ। जो अर्जुन ने कर्म किया, अर्जुन ने कर्म कभी किया नहीं, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए समस्त शास्त्रों का तात्पर्य ये भक्ति है, भक्ति में चलना चाहिए, सहज है। भगवान का एक नाम ले लिया यही तो भक्ति है, कोई परिश्रम नहीं है। चोरी करी करने में परिश्रम है किंतु इसमें परिश्रम नहीं है। अब हम चल रहे हैं अपने प्रसंग पर। हनुमान जी की भक्ति हमने बतलाई, वो प्रेमी भक्त है, मुक्त महा, वो शंकर जी हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है तब तक ये शंकर जी महादेव जी किसी न किसी रूप में भगवान के सेवक होकर के आते हैं। इसके बाद में हमने पांडवों की बात बतलाई और पांडवों में अर्जुन, भीम, द्रौपदी, इनकी भक्ति बहुत ऊंची है। कृष्ण सब समय प्यारी सखी उनको कहते थे, प्यारी सखी। और जब जब उन पर भीड़ पड़ी है तब तब वो वहां पर उपस्थित हुए हैं भगवान स्वयं। इसके बाद में ये हुआ प्रेमी पर कौन, पांडव लोग। किंतु पांडव लोग ब्रज में नहीं जा सके, इतनी भक्ति ऊंची नहीं है जो ब्रज में जा सके। हनुमान ब्रज में नहीं जाते, अयोध्या में रहते हैं, यहां नहीं आएंगे हनुमान जी, कहां ब्रज में। यदि ब्रज में आ गए और देखा जो उनके आराध्य जो को यशोदा जी कनमली दे रही हैं, कान ऐठ रही हैं, तो बिगड़ जाएंगे, अपने क्रोध को संभाल नहीं सकेंगे। वो तो प्रभु के रूप में देखते हैं। और यदि हनुमान ने कभी देख लिया जो अपनी प्रियाओं के चरणों में सिर रख रहे हैं, बंसी और मुकुट रख रहे हैं, तो हनुमान जी क्या करेंगे, अब यहां नहीं रहना चाहिए, भागो यहां से। ब्रज में प्रवेश, ब्रज है माधुर्य भूमि, यहां पर तो बिरले लोगों का ही प्रवेश है, साधारण लोगों का उसमें प्रवेश नहीं। यदि हनुमान जी को यदि ब्रज में जाना होगा तो जानते हैं क्या करेंगे, बड़े चतुर हैं, झट गोपीश्वर महादेव का रूप बना लेंगे, गोपी घूंघट निकाल लेंगे, गोपी बन जाएंगे और गोपियों की सेवा के लिए पहुंच जाएंगे। एक समय की बात है, शंकर जी कैलाश से ब्रज में आए कि हमारे प्रभु यहां पर अवतरण हुए हैं, जरा दर्शन तो कराऊं। विशेष करके उनका कैसा अद्भुत रास है, जो और किसी भी लीला में अवतार में नहीं हुआ, उसका हम दर्शन करेंगे, इसलिए आए। किंतु गोपियों ने ब्रज के बाहर सीमा पर ही उनको रोक दिया, कौन हो, मैं कैलाश से आया हूं, शंकर महादेव खड़े रहो यहां, ब्रज की सीमा में नहीं घुस सकते। गोपियों ने, एक साधारण सी गोपी ने उनको वहां पर, बहुत गिड़गिड़ाने लगे, जब मुझको ब्रज में हमको जाने दो, आदेश नहीं दिया। फिर बोले अच्छा एक बात करो, पौर्णिमा जी की आराधना करो, पौर्णमासी जी की, ये योग माया है, तो वो कृपा करके तुमको प्रवेशाधिकार दे देंगे। इसलिए उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना की बैठ करके, पूर्णिमा जी उनके सामने प्रकट हुई योग माया। योग माया कौन, जो कृष्ण के साथ में गोकुल में जन्म लेती हैं। तो उन्होंने उनको दर्शन दिए, बोलिए क्या चाहते हो, तो मैं ब्रज में प्रवेश करके कृष्ण की लीला की एक झांकी का दर्शन करना चाहता हूं, बस यही चाहता हूं। तो इस पुरुष शरीर से तो हो नहीं सकता, ये सांप टांप हपटा हटाना पड़ेगा, त्रिशूल रखना पड़ेगा, बैल को यहां से भगाओ, और नंग धड़ हुआ ऐसे नहीं होगा, तो कैसे होगा। तो ठीक है, उनका हाथ पकड़ लिया और वहीं पर ब्रह्म कुंड अभी भी है, उस ब्रह्म कुंड में डुबो दिया। डुबोने के साथ ही साथ में वो सुंदर, अत्यंत सुंदर 16 वर्ष की गोपी बन गई, बड़ी सुंदरी। ठीक है, तुम यहीं पर बैठ करके और यहीं से राधा कृष्ण का रास होगा, जब रात में तुम दर्शन करना, यहां से हटना मत, यहीं पर रहना। और एक झाड़ी में, वृंदावन में सेवा कुंज में झाड़ियां हैं कटीली, बस उसके अंदर में उनको बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद में शाम हुई, पूर्ण चंद्र उदित हुआ पूर्णिमा का, और कृष्ण ने बंसी बजाई और साथ साथ में गोपियां जहां जहां थीं वो अपने अपने कामों को, जो पतियों की सेवा कर रही थी छोड़ दिया, जो रसोई बना रही थी रोटी तवे पर जलती रहे और वो चल दिया, अपना जो श्रृंगार जहां पर जो कर रही थी, आंख में श्रृंगार, एक आंख में अंजन लगाया है, दूसरा बाकी है उसको छोड़ दिया, कोई कोई भी काम कर रही थी सब छोड़ दिया, भूल गई और उधर में दौड़ी, कोई जल्दीबाजी में झट से गले का हार पैर में लगा लिया और पैर का पैजनी लगा दिया गले में और चली, और ऐसे चली कि कोई देख ना सके एक दूसरे को, पहुंची फिर राश हुआ। अब यहां पर जो गोपी बनी हुई हैं शंकर जी दूर से वहां से देखने लगे, किंतु आज राश में रस नहीं आया, आनंद नहीं हुआ, क्यों आज मन नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ी है। मालूम होता कि इस राश लीला को देखने के लिए कोई विजातीय व्यक्ति आ गया है जिसका अधिकार नहीं है। ढूंढो तो कौन है, लाखों करोड़ों गोपियां एक साथ में उनको ढूंढने के लिए चले, तन्न तन्न करके खोज रही हैं। एक उसकी झाड़ी में छिपी हुई एक गोपी मिली, उससे पूछा तुम यहां पर क्यों बैठी है, तुम कौन है, तो बोल नहीं रही, किंतु पूर्णिमासी जी की स्मरण करने लगी, हा पूर्णिमा आकर के मेरी रक्षा करो। तो उसने एक गुलचा दिया गाल में बड़े जोर से, बोली ये तुम्हारा खसम कौन है, खसम जानती हो, तुम्हारा पति कौन है, उसका नाम क्या है। तो पूर्णिमा जी तो पति का भी विवाह तो कराया नहीं, नाम तो जानते नहीं, अरे तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तुम्हारा गांव कहां है, कुछ भी उत्तर नहीं दे। जब तक साधन में ये सब सिद्धियां नहीं होंगी तब तक ये कहां से, गुरु जी से नहीं मिले साधन में तब से ये सब भावें नहीं आएंगी, उन्होंने तो कोई साधन उस समय किया नहीं और तो कहां से मालूम हो। जब कोई उत्तर ना दे सके तो सब गोपियां मिलकर के गुलछे लगा करके गाल को फुला दिया पूरी तरह से, अब तो रोने डकरने लगे ये। इतने में पूर्णिमा जी आए, हाथ जोड़ करके बोली गोपियों से, जो मैंने इसको वर दिया है इसलिए आप लोग कृपा करें, अधिकार दें दूर से ये देखे। उस समय कृष्ण भी प्रसन्न होकर के और गोपियों ने प्रसन्न होकर के उनको वहीं पर रहने के लिए दिया वृंदावन में। अभी राक्षसस्थली के ईशान कोण में वो शंकर जी का की प्रतिष्ठा है, उनको कहते हैं गोपीश्वर महादेव। तो शंकर भी आए तो गोपी बन करके, हनुमान भी यदि आएंगे गोपी बन, बिना गोपियों का वहां पर किसी का अधिकार नहीं, ऐसा उन्नत देश है। पांडव लोग भला कहां से आ सकते हैं इस वृंदावन में, वो लोग वृक्ष के रूप में, अभी भी हमने देखा था 5 वृक्ष थे राधा कुंड के तट पर, और डोंट स्लीप, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, और ऐसे तन करके बैठो, सीट लाइक दैट, डोंट सीट लाइक दिस, बोलो
जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा कुंड के तट पर हमने आज से 50 वर्ष पहले हमने देखा 5 वृक्ष थे और एक वृक्ष और 6 पांचों पांडव और द्रौपदी। यह रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस कुंड को फिर से उद्धार करने लगे, घाट बंधवाने लगे, तो वो हाथ जोड़ करके रो करके कहे हम लोग पांडव हैं, हम लोग को कटवाइए मत, हम लोग को रहने दीजिए, हम अपनी सिद्धि होने के बाद में तब फिर ब्रजवास की प्रार्थना हम लोग लेकर के तब फिर हम सुख जाएंगे अपने आप सिद्धि होने, तो उन्होंने छोड़ दिया। जब वहां पर वृंदावन में वास करने के लिए पांडव जैसे लोग आराधना करते हैं तो हम लोगों की बात क्या, ऐसे ही नहीं हो जाता है वृंदावन का, वृंदावन में जाने पर भी वृंदावन का दर्शन नहीं होगा, भाव आने चाहिए, ये ज्ञान से भी नहीं होगा, ज्ञान से रस सूख जाएगा, भक्ति सूख जाती है, यहां तक कि तत्व ज्ञान को भी भूलना पड़ेगा, जो कृष्ण भगवान है एक दिन भूलना पड़ेगा, अभी तो प्रारंभिक अवस्था में जानो जो कृष्ण स्वयं भगवान है, विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वालों के भी प्रभु के प्रभु के भी प्रभु हैं, सब कारणों के कारण है, ऐसा समझना है। और जब भक्ति वृत्ति जब आएगी, श्रद्धा निष्ठा रुचि जब आएगी, तो ये भूल जाना पड़ेगा जे कृष्ण भगवान है। तब क्या याद रखना पड़ेगा, जशोदा के लाला है, नंद नंदन है, गोपियों के प्राणनाथ हैं, बंधु हैं गोपियों के, राधा के प्राण प्रियतम है, बस यही तक जानना है। नहीं तो शुद्ध प्रेमा भक्ति नहीं होगी, गोपियों जैसा प्यार नहीं कर सकेंगे। मथुरा के लोग उनको भगवान समझते हैं, किंतु ब्रज का कोई भी लोग कृष्ण को भगवान समझेगा, कभी नहीं समझ सकते, इसलिए ब्रज का इतना महत्व है। तो पांडव लोग नहीं जा सकेंगे, किसका अधिकार है। कृष्ण जब मथुरा में थे, जब गुरुकुल से लौटे तो ब्रज की याद आई और उन्होंने उद्धव से कहा, जे उद्धव जाओ ब्रज में, और मेरे वियोग में मेरे माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं, मैया अंधी हो गई, पिताजी कुछ खाते नहीं है, गायें मर रही हैं, बछड़े अब दूध नहीं पीते, बड़ी अजीब अवस्था है, और हमारे प्रेम की अवधि विरह की अवधि गोपियां भोगती हैं, गोपियां अब मरी तब मरी, मेरे लिए केवल आशा में जो मैंने कह दिया था जब मैं आऊंगा, इसलिए प्राण धारण कर रही हूं, इसलिए उद्धव तुम जाओ उनको सांत्वना दो। कृष्ण भली भांति जानते हैं भाई गोपियों को सांत्वना देना सहज नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी बात, यह संभव है, हो सकता है कि उनकी विरह की आग और भभक उठे, जल उठे, इसलिए उद्धव को कुछ बातें समझाया जाए, यही जा करके कहना अपने मन से कुछ मत जोड़ना। तो कृष्ण ने क्यों कहा, उद्धव को क्यों भेजा, भेजा क्यों, गोपियां लाखों की तादाद में हैं, करोड़ों करोड़ों हैं, अनगिनत हैं, और उनका प्रेम एक से एक बढ़ करके है। वो गोपियां कृष्ण के विरह में कैसे उनकी स्थिति है, जैसे मछली की स्थिति पानी के बिना होता है, पानी में से मछली को निकाल दो तो वो जीवित रह सकती है एक क्षण भी नहीं, छटपट करती हुई प्राण को छोड़ देती। किसी ने कहा जय राधा जी को, आ कृष्ण का प्रेम तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे जैसा किसी को कृष्ण प्रेम में, तो वो क्या कहती है, न प्रेम गंधोस्ति दरा मीना, वो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम कहां, यदि प्रेम होता जैसे मछली का पानी के प्रति प्रेम होता है, हमारा प्रेम कहां है, मछली को पानी से निकाल दो छटपट कर करके प्राणों को त्याग कर देती है, ये प्रेम का नमूना है। ऐसे प्रेमी को भगवान मिलते हैं जिनकी ये अवस्था नहीं है, हम तो चाहते हैं आज ही बस चट रोटी और पट रोटी, आज हरि नाम ले लो बस कल भगवान का दर्शन, इतना सहज नहीं कृष्ण का, शंकर जी का दर्शन संभव है, दुर्गा जी का है ये संभव है, गणेश जी का भी संभव है, किंतु इनका नहीं, बड़े टेढ़े हैं, और टेढ़े ऐसे हैं कि यदि भीतर में जाएंगे तो क्या होगा, फिर निकलेंगे, तू टेढ़ा हाँ तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ा, एक गोपी कह रही है, तू टेढ़ा टेढ़ी नजरिया, तुम्हारी नजरिया की कैसी है, टेढ़ी है, और वही नहीं तुम्हारी मैया भी टेढ़ी और तुम्हारे बाप भी टेढ़ा, और ये बज्र की नगरिया भी टेढ़ी टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी तेरी मैया, तुम्हारी मैया भी टेढ़ी है, और ये ब्रज की गलियां भी टेढ़ी है, सीधी कोई भी गली नहीं है, जाओ देखो बड़ी टेढ़ी टेढ़ी, और ब्रज के जो वृक्ष है वो कैसे हैं, टेढ़ी टेढ़ी है, और जमुना में कैसे, जमुना जी कैसे बहती हैं, वहां सीधी नहीं बहेगी कैसे, वो भी टेढ़ी टेढ़ी। अरे और की तो बात क्या,
तुम्हारी गोपियां भी हैं, वो सभी टेढ़ी हैं, तुमको भी टेढ़ा कर देती हैं, टेढ़ा को सीधा कर देंगी ये गोपियां। कोई गोपी तो ऐसे कहेगी, गोपियां जो आई हैं तुमको सीधा करने के लिए आई हैं, वही सीधा कर सकती हैं, उस टेढ़े को और नहीं। तो ये कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, यदि हृदय में चले जाएं फिर नहीं निकलेंगे। तो वो कृष्ण कह रहे हैं, सोच रहे हैं, गोपियां लाखों हैं, परस्पर परस्पर को सांत्वना देती हैं। महाप्रभु देखो तो एक बार इसी भाव में ऐसे मग्न हो गए, हा कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, रोने लगे आधी रात में। उसमें स्वरूप दामोदर जी ने कहा, अरे कृष्ण कहाँ है, तुम्हारे हृदय में ही तो कृष्ण है और कहीं नहीं। कहीं मेरे कृष्ण हृदय में है, बड़े प्रसन्न होकर के और अपने नखों को छाती में लगा करके चीरने लगे। मां उन्होंने रोक दिया, स्वरूप दामोदर जी ने रोक दिया। तो उन गोपियों की क्या दशा होती होगी कृष्ण के विरह में, इसलिए एक दूसरे को समझाती है। राधा जी को विशेष करके ललिता विशाखा समझाएगा कौन, जिसको कुछ होश आवास है वही तो समझाएगा, बोध है। और जो प्रेम में एकदम मत्त होकर के विरह अग्नि में जल रहा है उसको कौन, वो किसी को नहीं समझाएगी। तो गोपियां हैं जो इनको समझाती हैं, किंतु हमको समझाने वाला कोई नहीं है। मैं विरह में तड़प करके मरता हूं, हमारे दुख को कोई नहीं समझता, और गोपियों के दुखों को लोग समझते। सचमुच में हम देखते हैं कि गोपियां ब्रज में तड़प रही हैं कृष्ण के लिए, किंतु कहीं नहीं, भागवत में भी नहीं लिखा जो कृष्ण तड़प रहे हैं, हमारे गोस्वामियों ने लिखा जो तड़प रहे हैं। तो उद्धव जी को इसलिए भेज रहे हैं, उद्धव कुछ प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। सब वेद शास्त्र उपनिषद एमए पीएचडी डीलिट पढ़ने से आदमी विद्वान नहीं होता, वो मूर्ख का कोरा मूर्ख ही रहता है। यदि वो प्रेम का पाठ पढ़ करके आए, और वो प्रेम कैसा, कितने अक्षर का प्रेम, म प र मिला हुआ, प पूरा और म पूरा और आधा र, तो ये प्रेम अढ़ाई अक्षर का, किंतु जो पढ़ा सुपंडित हो। इसलिए कृष्ण भी वहीं पर पाठ करते हैं, पाठ करने जाते हैं प्रेम, कहां गोपियों के यहां। इसलिए उद्धव जी को भेज रहे हैं, जाओ उद्धव, उनसे कहा नहीं, उनको तो कहा जे सांत्वना दियाओ, किंतु भीतर की ये इच्छा थी, उद्धव कुछ योग्य है, हमारा मंत्री है, बहुत बुद्धिमान है, ये बृहस्पति का अवतार है, समस्त विद्याओं में पारंगत है, हमारे जैसा ही इसका रूप है, हमारा मित्र भी है, सखा भी है, हमारा सेनापति भी है, हमारा जनरल भी है, हमारा सब कुछ ही है, तो ये योग्य है, कुछ गोपियों की पाठशाला में जाकर के सीख सकता है, इसलिए भेजा। मन ही मन में उन्होंने सोचा कि जहां पर मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है उस विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रिंसिपल कौन है, श्रीमती राधिका जी, प्रोफेसर कौन है, एक एक विषय के एक्सपर्ट डीन और ये जो होते हैं, ये हैं ललिता विशाखा इत्यादि, इनकी पाठशाला में प्रेम की पढ़ाई होती है। कृष्ण भी बोल रहे हैं कि हमने वहां पर पढ़ा, हमने तुम भी उद्धव ही यदि जाएगा तो वहां पर यदि पढ़ करके लिख करके आएगा तो अपने दुख की कुछ बात ही कर सकता हूं, दूसरे किसे कहूं, सारे मथुरापुरी में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे अपने हृदय की बातें खोल करके कह सकते, इसलिए उन्होंने भेजा। उद्धव गए, इसलिए इनको प्रेमातुर भक्त कहा गया है, प्रेम में आतुर हो जाते हैं। गोपियों को निकट से देखने का सौभाग्य हुआ, गोपियों ने उनसे परीक्षा ली प्रेम की, एडमिशन करने के लिए कॉलेज में, प्रेम के कॉलेज में, किंतु उत्तीर्ण नहीं हो सके, पास नहीं कर सके, इसलिए इंटरव्यू में ही वो फेल हो गए। उनसे प्रश्न पूछा इंटरव्यू में, क्या पूछा? अच्छा उद्धव, क्या तुम बतला सकते हो प्रेम दो प्रकार का होता है? एक शुद्ध प्रेम होता है निस्वार्थ, और एक स्वार्थ प्रेम होता है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए समझा करके बतला रहा हूं गोपियां कह रही हैं उद्धव को। जैसे गणिका माने वेश्या लोगों से प्यार करती है, पुरुषों से, जिनके पास में धन होता है उनको ही प्यार करती हैं। यदि गुणवान व्यक्ति हो और धनी हो ऐसी बात नहीं, गुणवान होने पर योग्य भी होने से प्यार नहीं करेंगी धनी लोगों को, और अपने चंगुल में फंसा करके कब तक प्यार करेंगी? जब तक कि उनका पैसा एकदम निचोड़ न ले, और जब पैसा लेना हो जाएगा तो क्या करेंगी? अर्धचंद्र करके बाहर कर लेंगे, यहां पर मत आना। यह है स्वार्थ प्रेम। एक पुरुष है, एक स्त्री से प्रेम करता है, जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तो उसे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कामी पुरुष होते हैं। एक विद्यार्थी है, पाठशाला में पढ़ रहा है, जबकि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई तो गुरुजी को प्रणाम करके फिर कभी नहीं आएगा, खत्म हो गई पढ़ाई। एक भिक्षुक है, भिक्षा मांगने के लिए गया, दरवाजे पर किसी के वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक भिक्षा नहीं मिल जाती, और जहां भिक्षा मिल गई, बाबा जी जरा ठहरिए तो जरा भगवान की कोई कथा सुना दीजिए। अरे बेटी हमको समय नहीं है, बहुत जगह जाना है और मुझे आज बहुत देर हो गई, चला जाए। इसी तरह से हिरण उस वन में रहता है जहां पर फल फूल पत्ते इत्यादि मिलते हैं, अच्छी घास है, और यदि उस वन में आग लग जाए तो वहां पर नहीं रहेगा हिरण और जंगली जान। पक्षी बड़े छायादार और फलदार वृक्ष में, बट के पीपल के वृक्षों में रहते हैं हजारों हजार, किस लिए? वहां पर छाया है। यदि उसकी छाया नष्ट हो जाए, सूख जाए, तो उस पर एक भी चिड़िया नहीं आएगी। यह सब निस्वार्थ का प्रेम है। उद्धव देखो तो हमारा उनका काले का प्रेम निस्वार्थ, उसको भी प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं था, और हमारा भी उसके प्रति कोई भी स्वार्थ नहीं था। यह निस्वार्थ प्रेम उद्धव बतलाओ तो कैसे टूट गया, कैसे टूट गया? उद्धव जी सिर खुजला रहे हैं, फेल हो गए, मतलब उत्तर नहीं दे सके। तो यही ढाई अक्षर के स्कूल कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले सके। देखा जिनका अगाध प्रेम, कोई गांधी कैप पहन करके या हैट पहन करके और हिमालय को देखे कितना 7 मील ऊंचा, अब तो और अधिक, ऐसा देखा निकट से तो टोपी और हैट गिर जाएगा। जैसे उद्धव जी इनका प्रेम देख करके अत्यंत आश्चर्य में डूब गए, ऐसा प्रेम अगाध। गोपियों के पास में आए, उनके साथ में रहे, बहुत दिनों तक रहे, गोपियों को सांत्वना देने की चेष्टा करने लगे, और जितने वो सांत्वना दें उतना ही उनकी विरह की आग लगा। हा नाम रमण प्रेष्ट प्रेष्ट क्वाश क्वाश महा दास शास्त्री कृपणाया सखे में दर्शय सखे, विरह में कातर करके सभी गोपियां रोने लगती इनका आगार। उद्धव जी के आंखों से आंसू नहीं आए कृष्ण के लिए। उद्धव जी कहते हैं आहा, मैं कृष्ण के पास इतना रहा, उनकी सेवा किया, और मैं इनको छोड़ करके आया हूं यहां, उनके लिए हमारे आंखों में आंसू नहीं, और ये गोपियां तड़फ रही हैं कृष्ण के विरह में, ये है प्रेम। उद्धव जी ने कहा लौटने के समय, डर गए उद्धव, बोले जैसे गोपियों का इतना प्रेम और तड़फ रही हैं, कहीं मैं भी कृष्ण के प्रेम में ऐसा तड़पता था तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए कृष्ण के पास में मथुरा में हमको जल्दी से लौट जाना है, हमको अधिक यहां नहीं रहना है, इनका दुख देखा नहीं जाता। इसलिए जब जाने लगे तो गोपियों से पूछने लगे, गोपियों कृष्ण ने संदेश दे करके तुमको भेजा था, मैं लौट करके कृष्ण को क्या संवाद दूंगा, तुम कुछ बतलाओ। राधिका जी चुप रही। बार बार जब पूछने लगे तो राधिका जी कहती हैं, उद्धव तुम्हारा हृदय वज्र से बना है, कृष्ण का हृदय मक्खन से भी कोमल है। मक्खन तो ताप देने से ही गल जाता है ना, हाथ पर मक्खन लो तो क्या होगा, पिघल जाएगा, क्यों, हाथ में गर्मी है। कृष्ण उससे भी कोमल है। तुमने आकर के हमसे कहा, तुम्हारे विरह में कृष्ण बड़े छटपट छटपट कर, इसलिए भेजा तुम्हारा संवाद लेने के लिए, मैं आ ही गया तो एक दिन में लौट आऊंगा। कृष्ण से जाकर के ये मत कहना जो कृष्ण के विरह में ये गोपियां तड़फ रही हैं, नहीं तो क्या होगा, मक्खन से भी कोमल है वो, साथ ही साथ में प्राण को छोड़ देंगे, इसलिए उनसे मत कहना ये गोपियां तुम्हारे विरह में तड़फ रही हैं। उनसे ये कहना कि देखो गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, जैसे तुम उनको भूल गए हो गोपियां तुमको भूल चुकी हैं, भूलने की चेष्टा कर रही हैं, तुमको याद नहीं करती हैं और तुम्हारे विषय में वो बहुत गाली गलौज करती हैं, ऐसे कहना, धीरे धीरे कहना, 10 दिन के बाद में कुछ कहना। जैसे कोई एक पुराना कपड़ा है ना, पुराना बहुत पुराना, और उसको पानी में भिजा करके ऐसे निचोड़ोगे जोर से तो क्या होगा, फट जाएगा। इसलिए कृष्ण का हृदय ऐसे फट जाए यदि हमारा दुख सुनेंगे, बहुत कोमल है, हम लोग तो जीवित हैं, वो जीवित नहीं रहे। इसलिए धीरे धीरे एक एक करके कहना यहां की बातें हमारे दिया के। यदि वहां पर प्रसन्न है तो वो रहे, हम लोग प्रसन्न रहे या जैसे भी, इसमें हमारा दुख बहुत अधिक है, कोई बात नहीं। यदि हमसे मान ना मिल करके हमारे हृदय को पिस भी डाले तो हमारे ही प्राण नाथ, हम तो उनका सुख चाहते हैं कि वहीं पर रह करके भी सुखी रहें, हमारी चिंता अधिक ना करें। उद्धव जी सुन करके आश्चर्य से बोले, क्या बोले, आशाम हो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां चतुस्तजन स्वजन आर्य पथं च हित्वा भेजे मुकुंद पदविं श्रुति। ओ, ये गोपियां धन्य, जो कृष्ण के मन पे सब समय आरूढ़ है, मन के रूप रथ में कृष्ण जिनकी सब समय चिंता करते हैं, और गोपियां भी जो कृष्ण की चिंता करती हैं, गोपियां धन्य हैं। जिनके लिए कृष्ण विरह में आतुर हैं वो गोपियां कैसी हैं, इनकी चरण की धूली को पाने के लिए यदि वृंदावन में कभी गुल्म, और गुल्म माने क्या, छोटी छोटी घास, बड़े बड़े नहीं, छोटी छोटी घास है, दूब की घास है, गुल्म होती है जो थोड़ी सी इतनी बड़ी होती है। गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए अभिसार में जाएं तो उनकी चरण की धूली हमारे मस्तक पर लग जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हम इसे और कुछ अधिक क्या मांगे, बस यही प्रार्थना हूं, आसाम हो चरण। गोपियों का जीवन ही सार्थक है इस जगत में केवल, इसलिए उनके चरण धूलि को सेवा करने के लिए हमें यदि ब्रज में कहीं भी कोई गुल्म और घास हो जाए, हमारा जीवन सार्थक है। हमारे संप्रदाय के गुरु ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तदभूरि भाग्यमी हम जन किम पटभ्यम जज गोकुले भी कतम जोग से कम जज जीवितम तो निखिलम मुकुंद तद क्या कहते हैं, अरे वेद की ऋचाएं जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए उनको चरण की ध्यान करते भी कृष्ण का चरण नहीं आता है, और वो परब्रह्म गोपियों के मुट्ठी में है, कहते खड़े हो जाओ, खड़े होते हैं, बैठो, बैठ जाते हैं, उन गोपियों के परम आधीन है। इसलिए यदि ब्रज में कहीं हमारा पशु पक्षी कीट पतंग घास के रूप में भी हमारा जन्म हो जाए तो हम यही प्रार्थना करते हैं, गोकुलेपि गोकुलक माने क्या, गोकुलेपि यदि ब्रज में संभव नहीं है, गोकुल में भी है तो वहां पर भी टट्टी को भारतवर्ष में पहले जमादारनी या मेस्तरानी टट्टी कमाती थी, क्या जाने यहां पर पहले क्या था, टट्टी के घर होते थे और जमादारनियां आकर के उसको लेकर के फेंकती थी, सिर पर ले जाती थी। अब तो लैट्रिन की बहुत सुंदर सुविधाएं घर घर में हो गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो उस समय के लिए कह रहे हैं कि टट्टी कमाने वाली जो जमादारनी है, जिनको मेहतरानी भी कहते थे, वो जब काम करके और जब घर में लौटेंगी तो पत्थर पर अपने पैरों को रख करके पानी देकर के रगड़ती थी। अभी भी लोग रगड़ते हैं, तो लंबी लंबी वो व्यवहार फट जाएगी, इसलिए उसको मारते हैं, मोजा लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वो आकर के अपने पैरों को खींचेगी पानी दे करके, वो पत्थर भी होकर के वृंदावन में यदि जन्म ग्रहण कर लो कहीं गोकुल में, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ब्रह्मा की ये दशा है तो और लोगों की दशा, उद्धव जी हाथ जोड़कर कहने लगे ओहो इन्हीं का जन्म सार्थक है। संसार में ये गोपियां जो वृंदावन में विचरण करती हैं, कृष्ण से मिलती हैं, कृष्ण की सेवा करती हैं, यथार्थ में यही पतिव्रता है, और कोई भी संसार में पतिव्रता नहीं है। अरुंधति को सुनते हैं और सब सुनते हैं, वशिष्ठ जी की स्त्री, वशिष्ठ जी की और अत्रि की अनुसुईया इत्यादि पतिव्रता स्त्रियां हैं, किंतु वो पतिव्रता नहीं है। पतिव्रता कौन है? ये गोपियां ही हैं। क्यों? उनके दो पति नहीं हैं, कृष्ण ही परम पति हैं, पति के पति के पति के पति, वही भरण और पोषण करने वाले हैं। ये जो संसार के जो पति हैं, पति माने होता है प और ती, प माने पालन पोषण करना, ती माने त्राण करना, रक्षण करना। ये पति, संसार वाले पति हमारे प्राण की रक्षा करेंगे मृत्यु के समय में? करेंगे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए परम पति कौन है? कृष्ण ही परम पति है, इस चीज को समझो। अरुंधति को दो पति, एक लौकिक पति और एक परम पति कृष्ण भगवान राम, इसलिए वो पतिव्रता ने, वो भी राधिका और गोपियों की पतिव्रता को मांगती हैं, क्योंकि कृष्ण का अतिरिक्त तो उनका चित्त कहीं नहीं जाता है, इसलिए ये गोपियां धन्य हैं, इनके चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, भगवान के अवतार कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, और लोग साधारण लोग नहीं, और उसी को उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी के नकल करके वो लोग कहते हैं। ओहो ये गोपियां कैसे हैं, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं न पारे हम निर्बद्ध से, जिसका ऋण में कोटि कोटि जन्मों में नहीं चुका सकता, हे गोपियों तुम लोग अपने आप प्रसन्न हो। क्यों नहीं? सबकी तो आप बद दे करके उनको अभीष्ट पूर्ण कर सकते हो, तुम्हारा नहीं। क्यों? हम यदि कहेंगे ये कुछ मांगो तो मांगोगी ये तुम अपना सेवा दो बस, और कुछ चाहती ही नहीं। गोपियों ने कृष्ण का कभी भी कुछ खाया? नंद बाबा के घर का कभी उनको एक कपड़े दिए, एक साड़ी भी दी? उनका प्रेम निश्चय था, अप्राकृत प्रेम था, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। यही प्रेम गीता भागवत, यही प्रेम कब देने के लिए आया है? चैतन्य महाप्रभु इसी प्रेम को देने के लिए आए। इसलिए आप लोग सौभाग्यवान हैं जो इस कथाओं को सुन रहे हैं। गोपियों जैसे ही आप लोगों को भी भक्ति हो, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। यदि एक व्यक्ति का भी इसमें लोभ हो गया ब्रज की भक्ति के प्रति, तो हम समझेंगे हमारा पाठ यहां पर साथ। पैसे के लिए नहीं है, आप लोग पैसे प्रणामी दें, नहीं, इसके लिए एक व्यक्ति का भी हृदय या लोभ में हो जाए कि भगवान की भक्ति, वो भी भक्ति कैसी? गोपियों जैसी भक्ति, ऐसी भक्ति हो, राधा और कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम हो। यदि किसी के एक मन में भी आ गया तो मैं समझूंगा एक व्यक्ति भी हमारा फॉलो किया, हमारा ये पाठ करना या फीजी में आना हमारा सार्थक हो जाए। मैं तो सबसे यही भीख मांगता, भीख मांगने के लिए आया। प्यारी बेटियों, माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे बेटों, कृष्ण का भजन करो। ये खान पान में गड़बड़ी न रख करके अंडे मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, गुरुजनों का आदर करते हुए जीवन में किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करो, मरना तो ये सब छोड़ करके जाना है, कोई भी एक कुछ नहीं लेकर के जाएगा। इसलिए आत्मा को पहचान करके भगवान का भजन करके और बस जगत से चले जाओ, फिर इस जगत में आना ना पड़े। इसी के लिए हमने इतना सब कहा, इसलिए मैंने धन्यवाद इन लोगों को दिया। फिर यदि अगले वर्ष होगा तो फिर आएंगे, यदि तबीयत ठीक रही, और नहीं तो ये सबको याद रखेंगे जो महाराज जी ऐसे कह गए, इसे कम की कोई बात नहीं भगवान से मांगना, ऐसा ही भाव। गौ प्रेमानंदे, हाँ जरा वो नाम डिक्लेयर कर, क्या करना है अब? नहीं है, हो गया ना।
Thus ends the class on the 8th of February 2002 in the evening in Lautoka, Fiji. Hare Krishna.